ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का औपचारिक उद्घाटन किया। कहा, ये एकता और समानता का ऐसा महायज्ञ होगा जो राष्ट्र का मार्गदर्शन करेगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, महिला सम्मान योजना के लिए 7 से 10 दिनों में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। कांग्रेस की भी 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। और दिल्ली पुलिस ने कहा, राजधानी के स्कूलों को बम धमकी के मामले की जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महाकुंभ 2025 एकता और समानता का ऐसा महायज्ञ होगा जो राष्ट्र का मार्गदर्शन करेगा और इसकी चर्चा पूरे विश्व में होगी। श्री मोदी आज प्रयागराज के संगम क्षेत्र में महाकुंभ 2025 का औपचारिक उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। महाकुंभ आधिकारिक रूप से अगले वर्ष 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लगभग 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें प्रयागराज में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और निर्बाध संपर्क प्रदान करने की विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की पावन धरती पर एक नया इतिहास रचा जाएगा।
महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है।
पिछली सरकारों के शासन पर अफसोस व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले कुंभ को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था क्योंकि वे भारतीय संस्कृति से अलग थलग थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उनकी सरकार ने कुंभ और शहर का संपर्क बढ़ाने की कई परियोजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर प्रमुख मंदिरों के गलियारों का भी उद्घाटन किया। इनमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, श्रृंगवेरपुरम धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा और अन्य मंदिर शामिल हैं। स्वच्छ और निर्मल गंगा के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने गंगा नदी में जाने वाले छोटे नालों को रोकने और उनकी दशा बदलने और उनके पानी को उपचारित करने की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इससे नदी में जरा भी प्रदूषित और मिलावटी पानी नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने मेला परिसर को साफ रखने में लगे लोगों को उन्नत किस्म के टैंक दिए।
कुंभ जैसे भव्य और दिव्य आयोजन को सफल बनाने में स्वच्छता की बहुत बड़ी भूमिका है। महाकुंभ की तैयारियों के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। प्रयागराज शहर के सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए गंगा दूत, गंगा प्रहरी और गंगा मित्रों की नियुक्ति की गई है। इस बार 15,000 से ज्यादा मेरे सफाई कर्मी कुंभ की स्वच्छता को संभालने वाले।
प्रधानमंत्री ने कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ किया। इसमें महाकुंभ मेला 2025 की गतिविधियों के बारे में श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कुंभ को प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संगम के लिए याद किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आज कश्मीरी गेट स्थित डॉक्टर बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। श्री सक्सेना ने स्नातक, पीएचडी और एमफिल के विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किए। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसमें संस्थान की उपलब्धियों को दर्शाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को कल ही अधिसूचित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राजधानी में रहने वाली 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को सरकार हर महीने 2100 रुपए प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रयास करेगी कि अगले 7 से 10 दिन के भीतर महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ही एकमात्र सरकार है जो महिलाओं के दर्द को समझती है। इस बीच मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और आयुष्मान भारत योजना के मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि सिर्फ योजना लागू करने का पार्टी वादा करती है लेकिन पूरा नहीं करती।
जादूगर नहीं है, वो बाजीगर है, वो झूठा आदमी है। बहनें चिंता क्यों ना करें? पिछले 10 साल में देना चाहिए था ना, जब 2015 में आया था तब बहनों की चिंता नहीं हुई, अब चुनाव सिर पे आ गया तो बहनों की चिंता हो रही है।
दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 30 विद्यार्थी फ्रांस की राजधानी पेरिस से फ्रेंच भाषा का एडवांस कोर्स करके आज राजधानी वापस लौट आए। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने विद्यार्थियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आतिशी ने विद्यार्थियों के साथ संवाद में कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सपने अब साकार हो रहे हैं।
ऐसे हमारे बच्चे होंगे ये तो हमने पहले से सपना में ही सोचा था और आज हमें देखने को मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। पूरी दिल्ली को, पूरे देश को ये दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे किसी से कम नहीं होते।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने आज आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तीसरी सूची जारी कर दी। पार्टी ने नजफगढ़ से तरुण यादव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी कल 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने बादली विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, नई दिल्ली विधानसभा सीट से संदीप दीक्षित, बल्ली मारान से हारून यूसुफ, वजीरपुर से रागनी नायक, सीलमपुर से अब्दुल रहमान और सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से अनिल भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया गया है। इस अवसर पर मीडिया के साथ बातचीत में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ लड़ेगी।
हमारे साथ साथ बहुत सारे सीनियर लीडर्स ऐसे हैं, मुझे खुशी है कि हमारी लीडरशिप ने बहुत सोच विचार करने के पश्चात स्क्रीनिंग कमेटी का और मैं मेरे माननीय इंचार्ज साहब और सेक्रेटरीज का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक पूरी एक्सरसाइज के बाद ये एक बेहतर 21 लोगों की जो है लिस्ट जारी की। कुछ दिनों पश्चात दूसरी लिस्ट भी जल्दी ही जारी हम करेंगे।
दिल्ली के मतदाता सूची में कथित विसंगतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मिली। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए राजधानी में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों को शरण दी है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी द्वारा शासित दिल्ली सरकार पर 14 से अधिक सीएजी रिपोर्ट को दबाए रखने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से इस सीएजी रिपोर्ट को पेश करने के लिए विधानसभा का तत्काल सत्र बुलाने की मांग की।
सवाल तो यही है कि पूरे कार्यकाल में एक भी रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं आई, ये हैरानी की बात है, ये चिंता का विषय है। सदन बुलाएं, आचार संहिता लगे या ना लगे, सदन की अवधि फरवरी तक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बहाने चलेंगे, ये हम चलने नहीं देंगे।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने आज चौथे दिन बूथ सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत बूथ के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इसके अंतर्गत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बूथ कार्यकर्ताओं की आवास पर उनके नाम की पट्टिका के साथ साथ पार्टी के झंडे लगाए। आम आदमी पार्टी विधायक रघुवेंद्र शौकीन ने आज दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली। श्री शौकीन को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजनिवास में आयोजित एक कार्यक्रम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री शौकीन राजधानी की नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रघुवेंद्र शौकीन को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्र आज उन सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है जिन्होंने 23 वर्ष पहले 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमले के दौरान संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में संसद के सुरक्षा कर्मियों के अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहादुरों का सर्वोच्च बलिदान देश को सदैव प्रेरित करता रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
संसद पर हुए हमले की हम सभी जानते हैं बरसी है, तो मैं इस लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करने वाले अपने सारे शहीद सुरक्षा कर्मियों के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने की संसद की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है।
संसद के दोनों सदनों में भी आज श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों के सदस्यों ने वीर सुरक्षा कर्मियों के सम्मान में मौन भी रखा। जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस अवसर पर सदन आतंकवाद से दृढ़तापूर्वक निपटने की प्रतिबद्धता दोहराता है।
ये सभा 13 दिसंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के दौरान संसद की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त सभी मान शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने संकल्प को पुनः दोहराते हैं।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देशवासियों को हमारी एकता, स्वतंत्रता और न्याय की सुरक्षा के लिए अटल रहना चाहिए। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसदों ने आज संसद भवन में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। लोकसभा में आज भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को छूकर राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। आज सवेरे राजधानी के 6 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। अधिकारियों को सूचना मिलते ही प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को वापस घर भेज दिया गया। मीडिया के साथ बातचीत में दक्षिण पश्चिम पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि पुलिस ने उचित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया। दिल्ली पुलिस द्वारा कई फर्जी पासपोर्ट गिरोहों पर कार्रवाई जारी है। मीडिया के साथ बातचीत में पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने कहा कि विदेशी नागरिक अवैध रूप से जाली दस्तावेज बनाकर पासपोर्ट प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि IGI एयरपोर्ट पुलिस टीम द्वारा 15 बांग्लादेशी नागरिकों, 15 एजेंटों को गिरफ्तार किया है जो जाली दस्तावेज उपलब्ध कराने का कार्य करते थे। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 22वां दिव्य कला मेला कल से शुरू हो गया। मेले में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 10 दिव्यांग उद्यमी और कारीगर अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये विशेष आयोजन देश भर के दिव्यांग शिल्पकारों, उद्यमियों और कलाकारों की अद्भुत प्रतिभा, रचनात्मकता और उद्यमशीलता को प्रदर्शित करेगा।
आगंतुक इस मेले में विविध प्रकार के हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम, पर्यावरण अनुकूल स्टेशनरी और लाइफस्टाइल उत्पाद, होम डेकोर, व्यक्तिगत एक्सेसरीज, कल्चरल बैग जैसे उत्पाद देख और खरीद सकेंगे। दिल्ली से आई सुचिता ने बताया कि उनके पंडाल में दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग उपलब्ध है।
ये एक फीडमिया पे NGO है जहाँ पर बच्चे पेंटिंग करते हैं, डिसेबल बच्चे, और फिर बाद में उसको हम एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं जो इससे इनकम आती है और ऑल ओवर इंडिया सेल होता है।
11 दिवसीय यह मेला प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों की क्षमता, दृढ़ संकल्प और कौशल को प्रदर्शित करना है। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज शाम 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 255 था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ इलाकों में AQI का स्तर 250 को पार कर गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में रात और सुबह के समय धुंध और हल्का कोहरा छाया रह सकता है। दिल्ली में कल शीतलहर चलने के बाद आज मौसम सामान्य रहा। हालांकि सुबह और शाम के समय ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का औपचारिक उद्घाटन किया। कहा, ये एकता और समानता का ऐसा महायज्ञ होगा जो राष्ट्र का मार्गदर्शन करेगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, महिला सम्मान योजना के लिए 7 से 10 दिन के भीतर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 3री सूची जारी की। कांग्रेस पार्टी ने भी 21 उम्मीदवारों की 1ली सूची जारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।